21 मार्च दिन भर दिन सोमवार, मैं हूं रेहान फदल। राष्ट्रपति ओबामा की क्यूबा के राष्ट्रपति राउल कास्ट्रो से मुलाकात, कहा बदलाव होकर रहेगा।
Change is going to happen here, and I think that Raul Castro understands that.
कश्मीर पर विशेष रिपोर्टों की पहली कड़ी में आज बात करेंगे कश्मीर में बढ़ रहे चरमपंथी हमलों के बारे में।
एक रेडिकलाइजेशन है और एक दोबारा एक एलिनेशन का एक माहौल हुआ, और जिसमें एक फ्राइटनिंग चीज जो है वो ये है कि लोकल यूथ की जो रिक्रूटमेंट मिलिटेंसी में लोकली हो रही है, बहुत सारे मिलिटेंट अटैक्स जो है आए दिन तकरीबन कुछ एरियाज में, इसमें कोई
जिक्र होगा T20 विश्व कप का भी। लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, अमल चौधरी से। अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा क्यूबा पहुंच चुके हैं। वे 3 दिनों के क्यूबा दौरे पर हैं। अमरीकी इतिहास में ओबामा क्यूबा की यात्रा करने वाले दूसरे राष्ट्रपति बन गए हैं। अमरीका में रिपब्लिकन पार्टी ने बराक ओबामा की इस यात्रा की आलोचना की है। रिपब्लिकन पार्टी के लोगों का कहना है कि जब तक कास्त्रो परिवार सत्ता में है तब तक ये दौरा नहीं होना चाहिए था। अमरीका और क्यूबा के बीच पिछले साल के जुलाई महीने में कूटनीतिक संबंध बहाल हुए थे। पिछले एक सप्ताह से लापता चल रहे चीन के मशहूर स्तंभकार जिया जिया के वकील यान जिन ने पुष्टि की है कि जिया को बीजिंग पुलिस ने हिरासत में लिया है। जिन ने बताया कि जिया को पुलिस ने पिछले हफ्ते एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया था, जहां से वो हांगकांग जाने वाले थे। इस महीने की शुरुआत में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को एक चिट्ठी भेजी गई थी जिसमें उनके इस्तीफे की मांग की गई थी। माना जाता है कि जिया इस चिट्ठी से किसी तरह से जुड़े हुए हैं। चिट्ठी को एक सरकारी साइट पर अपलोड किया गया था, हालांकि इसे कुछ ही देर बाद हटा दिया गया। इसराइल ने कहा है कि वो युद्धग्रस्त यमन में मौजूद बचे हुए यहूदियों में से कईयों को बचाने में कामयाब रहा है। एक गुप्त मिशन के तहत इसराइल ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और 19 लोगों को वहां से निकाला। इस समूह में एक व्यक्ति के पास से एक धार्मिक पुस्तक भी मिली है जिसे 500 साल पुराना माना जा रहा है। इसराइल के अनुसार इन सभी को वहां मौजूद शिया समुदाय के हूथी विद्रोहियों से खतरा था। इस ऑपरेशन को इसराइल के साथ मिलकर अंजाम देने वाली यहूदी एजेंसी के अवीमेयर ने बताया कि आखिर क्यों लोग यमन छोड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा,
It is a country in the midst of a civil war, and the situation is certainly difficult for anyone. I think there are many who would be eager to leave.
यह एक ऐसा देश है जो गृह युद्ध की स्थिति से जूझ रहा है। वहाँ हर एक व्यक्ति के लिए मुश्किल भरा वक्त है और सभी यमन छोड़ना चाहते हैं, लेकिन यहूदियों को पिछले समय में निशाना बनाया गया है। पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि यहूदियों को उनके धर्म के आधार पर कत्ल किया जा रहा है। हमारे सामने एक ऐसा मामला भी आया है जिसमें एक यहूदी को जबरदस्ती इस्लाम धर्म कबूल करवाया गया। यहूदी एजेंसी के अवी मेयर के शब्द। पाकिस्तान के कराची शहर में एक सिक्योरिटी गार्ड ने भुतहा मास्क पहने 11 साल के बच्चे को गोली मार दी। पुलिस के अनुसार मास्क पहने बच्चे ने अचानक पीछे से आकर गार्ड को डराना चाहा और इसी प्रतिक्रिया में गार्ड ने गोली चला दी। बच्चे को अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। गार्ड को गिरफ्तार कर लिया गया है। कराची से बीबीसी संवाददाता बताते हैं कि शहर में बड़ी संख्या में सिक्योरिटी गार्ड हैं, लेकिन ज़्यादातर को बहुत कम पैसा मिलता है और ढंग का प्रशिक्षण भी नहीं दिया जाता। दुनिया के नंबर एक टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने महिला और पुरुषों के लिए एक समान पुरस्कार राशि पर सवाल उठाया है। जोकोविच ने पुरुषों को ज्यादा पैसा देने की वकालत करते हुए कहा है कि ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि महिलाओं के मुकाबले उनके मैचों को देखने ज्यादा दर्शक आते हैं। इंडियन वेल्स में बीएनपी परिभाष जीतने के बाद जोकोविच ने कहा कि दर्शकों के आधार पर पुरस्कार राशि तय होनी चाहिए। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फदल का। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा अपनी ऐतिहासिक क्यूबा यात्रा पर हैं। 3 दिनों की अपनी क्यूबा यात्रा में वो दोनों देशों के बीच व्यापार और राजनीतिक सुधार जैसे मसलों पर चर्चा भी करेंगे। आज वो क्यूबा के राष्ट्रपति राउल कास्ट्रो से मिल रहे हैं, लेकिन इस दौरे में वो क्यूबा के क्रांतिकारी नेता फिदेल कास्ट्रो से नहीं मिलेंगे। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे विवरण के साथ अमर शर्मा।
ओबामा 88 सालों में ऐसे पहले अमरीकी राष्ट्रपति बन गए हैं जो राष्ट्रपति रहते हुए क्यूबा आए हैं। उन्होंने अपनी क्यूबा यात्रा को ऐतिहासिक बताया है। अपने आधिकारिक विमान एयरफोर्स 1 से उतरकर वो परिवार के साथ सीधे क्यूबा में अमरीकी दूतावास गए, जो पिछले साल ही दोबारा खोला गया था। ओबामा का स्वागत क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिग्यूज ने किया। अमेरिका और क्यूबा के बीच संबंधों को सहज बनाने की दिशा में ओबामा की क्यूबा यात्रा बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अमरीकी दूतावास पहुंचकर उन्होंने कहा कि 1928 में राष्ट्रपति कैल्विन कूलिज एक युद्धपोत में क्यूबा आए थे। इस यात्रा में उन्होंने 3 दिनों का समय लगाया था, मुझे सिर्फ 3 घंटे लगे। एयरफोर्स 1 विमान ने सीधे क्यूबा में लैंडिंग की और ये हमारा पहला स्टॉप था। क्यूबा में बारिश हो रही थी लेकिन ओबामा अपने परिवार के साथ बारिश में ही निकल पड़े और हवाना के पुराने शहर की गलियों में घूमने पहुंच गए। क्यूबा के राष्ट्रपति राउल कास्ट्रो से मिलकर वो अमरीका और क्यूबा के बीच राजनीतिक सुधार और व्यापार के मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हवाना पहुंचकर उन्होंने सोशल मीडिया ट्विटर पर ट्वीट किया कि इस मुलाकात को लेकर वे उत्सुक हैं और वे सीधे क्यूबा की जनता से भी बातचीत करना चाहेंगे। अमरीकी न्यूज चैनल ABC को दिए साक्षात्कार में ओबामा ने कहा कि वो क्यूबा एकदम सही वक्त पर आए हैं।
Obviously, our intention has always been to get a ball rolling, knowing that change wasn't going to happen.
हमेशा से हमारा इरादा बातचीत बढ़ाने का रहा है क्योंकि बदलाव रातों रात नहीं आते। हमारे दूतावास के दोबारा खुलने से हमें लगता है कि बदलाव लाने की हमारी कोशिशों में इजाफा होगा। हालांकि क्यूबा में मानवाधिकारों और व्यक्तिगत आजादी के मुद्दे पर हमारे मतभेद बने हुए हैं।
ये थे ओबामा के शब्द। ओबामा ने कहा कि एक चीज जिससे क्यूबा में परिवर्तन आ जाएगा वो है इंटरनेट पर सबकी पहुंच। उन्होंने कहा कि क्यूबा की कम्युनिस्ट सरकार ने ये माना है कि ऐसा होकर रहेगा।
हम इसकी भी घोषणा करने वाले हैं कि क्यूबा में वाईफाई और ब्रॉडबैंड स्थापित करने के लिए गूगल के साथ एक समझौता हो। यहाँ बदलाव होने को है और मुझे लगता है कि राउल कास्ट्रो इसे बखूबी समझते हैं।
क्यूबा की सरकार ने कहा है कि ओबामा की यात्रा के दौरान वो मानवाधिकार और लोकतंत्र जैसे तमाम मुद्दों पर बातचीत के लिए तैयार हैं। लेकिन विदेश मंत्रालय की एक अधिकारी जोसफीना विडाल ने कहा कि इन मुद्दों पर कोई बातचीत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए क्यूबा में किसी नीति को बदला नहीं जाएगा।
बराक ओबामा क्यूबा में। आइए देखते हैं अमरीकी समाचार माध्यमों में इस यात्रा को किस तरह से लिया जा रहा है। सीधे चलते हैं वॉशिंगटन ब्रजेश उपाध्याय के पास। ब्रजेश, क्या गहमा गहमी है अमरीका में?
देखिए रेहान, ज्यादातर अखबारों और टीवी चैनल्स ने इसके ऐतिहासिक महत्व की बात करते हुए इसके पक्ष और विरोध में जो दलीलें हैं उन्हें भी सामने रखा है। जाहिर है सभी अखबारों के फ्रंट पेज पर है ये खबर। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस पर एक सर्वे भी करवाया है जिसके अनुसार 62% अमरीकियों का मानना है कि आपसी संबंधों के का बहाल होना अमरीका के हित में है। वहीं सिर्फ 40% है जिनका मानना है कि इस दौरे से क्यूबा में लोकतंत्र के समर्थकों के हाथ मजबूत होंगे। 60% ऐसे हैं जो क्यूबा पर लगे जो व्यापार प्रतिबंध है, ट्रेड प्रतिबंध है, उन पर उन्हें हटाए जाने के हक में। वॉशिंगटन पोस्ट ने मायामी से एक रिपोर्ट की है जहां क्यूबाई मूल के लोगों की खासी तादाद है। वहां एक जगह है जिसका नाम है लिटिल हवाना और अखबार का कहना है कि यहाँ की नई पीढ़ी एक का नजरिया काफी सकारात्मक है इस मामले को लेकर। वहीं जो पुरानी पीढ़ी है वो इसे एक बिट्रेयल या धोखा की तरह देख रहे हैं। उनका कहना है कि अमेरिका ने बिना कोई गारंटी लिए क्यूबा की कम्युनिस्ट सरकार की ज्यादतियों को नजरअंदाज कर दिया है। मानवाधिकारों का हनन अभी भी पहले जैसा ही हो रहा है और अमेरिका ने 1 मील कदम आगे बढ़ाया है तो क्यूबा की कम्युनिस्ट सरकार 1 इंच भी नहीं आगे बढ़ी है। वही एबीसी न्यूज ने खबर प्रकाशित की है कि ओबामा राउल कैस्ट्रो से तो मिलेंगे लेकिन फिदेल कैस्ट्रो से उनकी मुलाकात नहीं हो रही है। डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बेन रोड्स ने कहा था कि ना तो अमेरिका और ना ही क्यूबा ने ओबामा और फिदेल की मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की है। गौरतलब है कि पिछले साल जब द्विपक्षीय संबंध बहाल होने का ऐलान हुआ था तब फिदेल कास्ट्रो ने क्यूबाई सरकार नियंत्रित अखबार में लिखा था कि मेरा अमरीकी पॉलिसी पर विश्वास नहीं है और न ही मेरी उनसे कोई बातचीत हुई है, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं कि मैं शांतिपूर्ण हल का विरोध कर रहा हूँ। तो कुल मिलाकर अमेरिका में एक मिली जुली प्रतिक्रिया है इस दौरे को लेकर। रिपब्लिकन इसका खासा विरोध कर रहे हैं। जो राष्ट्रपति पद की रेस की उम्मीदवारी की जो रेस चल रही है उसमें भी इसका जिक्र आ रहा है, लेकिन ओबामा की दलील है कि ये शुरुआत एक मजबूत बुनियाद रखेगी।
बहुत बहुत धन्यवाद वॉशिंगटन से ब्रजेश उपाध्याय आपका।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो।
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
और अब कुछ खबरें भारत से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दलितों और अन्य पिछड़े वर्गों को दिए जा रहे आरक्षण की नीति में कोई बदलाव नहीं लाया जाएगा। दिल्ली में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मेमोरियल लेक्चर देते हुए प्रधानमंत्री ने ये आश्वासन दिया। अपने अभिभाषण में उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के योगदान को मार्टिन लूथर किंग के समान बताते हुए विश्व मानव का दर्जा दिए जाने की भी बात कही। वहीं कांग्रेस ने इसे और राष्ट्रवाद पर आए वक्तव्य को राजनीतिक बयानबाजी करार दिया। पूरी जानकारी के साथ दिव्या आर्य।
खुद बाबा साहब अम्बेडकर भी आकर के आपका ये हक नहीं छीन सकते।
दलित समुदाय के प्रति असंवेदनशील होने के आरोपों से जूझ रही एनडीए सरकार के लिए 125वीं अंबेडकर जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिभाषण एक अलग छवि बनाने की ओर प्रयास जैसा दिखा। प्रधानमंत्री ने दलित और अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण के मुद्दे पर अपना पक्ष एकदम साफ रखा।
अनेक राज्यों में हम जिस विचार को लेकर के निकले हैं, उस विचार वालों को सरकार चलाने का अवसर मिला, दो तिहाई बहुमत से अवसर मिला, लेकिन कभी भी दलित, पीड़ित, शोषित, ट्राइबल, उनके आरक्षण को खरोच तक नहीं आने दी है, फिर भी झूठ चलाया जा रहा है।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से नवंबर में एक बयान आया था कि देश के हित में एक कमेटी बनाई जानी चाहिए जो आरक्षण पर समीक्षा कर ये बताए कि कौन से क्षेत्र में और कितने समय के लिए आरक्षण दिए जाने की जरूरत है। पिछले 6 महीनों में पहले गुजरात में पटेल समुदाय और फिर हरियाणा में जाट समुदाय ने आरक्षण के मुद्दे पर प्रदर्शन किए, जिनमें हिंसा से दर्जनों की मौत हुई और लूटमार आगजनी से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। और दिसंबर में हैदराबाद विश्वविद्यालय में दलित छात्र रोहित वेमला ने जातिगत भेदभाव का आरोप लगाकर आत्महत्या की। पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मेमोरियल लेक्चर देने वाले पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंबेडकर को दलित ही नहीं बल्कि सभी पिछड़े वर्गों का हितैषी बताते हुए भारत की आजादी के बाद हिंदू कोड बिल में महिलाओं को समान अधिकार दिए जाने की अंबेडकर की मांग का हवाला भी दिया।
सरकार दब गई कि भारत में ऐसा कैसे हो सकता है कि महिलाओं को संपत्ति का अधिकार देंगे, वो तो बहू बन करके कहीं चली जाती है तो फिर पता नहीं क्या हो जाएगा। ऐसे समय बाबा साहब को लगा अगर भारत की नारी को हक नहीं मिलता है तो फिर उस सरकार का बाबा साहब हिस्सा भी नहीं बन सकते, और उन्होंने सरकार छोड़ दी थी।
उधर कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती रही है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक फायदे के लिए राष्ट्रीय नेता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पर इतने कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है, जबकि बहुत दशकों से पार्टी ने ऐसा कोई रुझान नहीं दिखाया था। अभिभाषण के बाद कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने एक प्रेस वार्ता कर कहा कि आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष पर आरोप लगाने की बजाय सरकार को सोचना चाहिए कि ये मुद्दा तो आरएसएस ने ही छेड़ा था। रविवार को खत्म हुई भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा,
यस्टरडे द बीजेपी वंस अगेन किक्ड ऑफ।
रविवार को एक बार फिर राष्ट्रवाद पर बयानबाजी हुई, वो ऐसा सिर्फ पिछले 22 महीने की नाकामियों को छुपाने के लिए कर रहे हैं। ये भी सोचने वाली बात है कि राष्ट्रवाद की बात वो पार्टी कर रही है जिसके नेता आज़ादी की लड़ाई में नहीं लड़े और जिनके नेताओं ने जेल से बाहर आने के लिए ब्रितानी हुकूमत से माफी तक मांगी।
बीजेपी की कार्यकारिणी में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा था कि वो किसी पार्टी, व्यक्ति या सरकार की आलोचना का स्वागत करते हैं, पर देश की आलोचना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रविरोधी कार्य को अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर सही नहीं ठहराया जा सकता। पर मनीष तिवारी के मुताबिक ये बयान अच्छे दिन आने के अधूरे वायदे, खाद्य पदार्थों की आसमान छूती कीमतें और आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकती की नीति से ध्यान हटाने के लिए किया जा रहा है। दिव्या आर्य, बीबीसी दिल्ली।
भारत प्रशासित कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन वाली गठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री मुफ्ती सईद के देहांत के बाद घाटी में जो राजनीतिक अस्थिरता पैदा हुई थी उसमें आए दिन नए मोड़ आते हैं। पिछले 2.5 महीनों से वहां राष्ट्रपति शासन है, लेकिन बीजेपी और मुफ्ती की पुत्री महबूबा के बीच बातचीत के कई दौर विफल हो गए हैं। एक बार फिर महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली का रुख किया है और ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि महबूबा इस बार शपथ लेने पर राजी हो जाएंगी। श्रीनगर से रियाज मसरूर की रिपोर्ट।
पिछले दिनों जब आरएसएस के नेता राम माधव ने महबूबा मुफ्ती की शर्तें मानने से साफ इनकार करते हुए कहा कि सरकार का गठित होना अब असंभव है, तो महबूबा मुफ्ती वापस लौटी और पार्टी कार्यकर्ताओं से दोबारा सलाह मशवरा शुरू किया। आज अचानक वो दोबारा दिल्ली चली गईं, जिसके बाद ऐसा लगता है कि बीजेपी और पीडीपी कई अड़चनों के बावजूद सरकार गठित करने पर राजी हो गए हैं। महबूबा हर बार उस समझौते की दहाई देती रही हैं जो मुफ्ती सईद ने बीजेपी के साथ गठबंधन सरकार बनाने से पहले किया था।
और मैं किसी भी सूरत में नहीं चाहूंगी कि जैसे हम कश्मीरियों पे इल्जाम लगा रहता है कि ये शायद अपनी बात के पक्के नहीं है। मेरे वालिद अपनी बात के पक्के थे, मैं भी उनकी बात के पक्की हूँ, मगर जहाँ उन्होंने एक अलायंस जोड़ा, एक रिश्ता जोड़ा बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ, वहाँ एक एजेंडा ऑफ अलायंस बना है। कुछ हमने आपस में एक प्रोग्राम तय किया है जिसमें पेशरफ्त की जरूरत है। जिस वक्त वो पेशरफ्त होगी तो इंशाल्लाह जो मुफ्ती साहब का जो मकसद है, जो मुद्दा है, मैं उसको पूरा करने के लिए आगे बढ़ूंगी।
पिछले दो महीने से महबूबा मुफ्ती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात का प्रयास कर रही हैं। वो चाहती हैं कि प्रधानमंत्री इन्हें ये आश्वासन दें कि गठबंधन के समझौते को लागू किया जाएगा। हालांकि लोकसभा और भाजपा की एक विशेष सभा में भी वित्त मंत्री अरुण जेटली ने यह आश्वासन दिया है कि बीजेपी को एजेंडा ऑफ अलायंस पर कोई एतराज नहीं है। इस समझौते के मुताबिक भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत, कश्मीर में प्रगति के लिए खुले दिल से फंड्स देना और पनबिजली योजनाओं को राज्य के सुपुर्द करने जैसी बातें हैं। विश्लेषक बुरहान फारूकी कहते हैं कि अगर महबूबा मुफ्ती अंततः मुख्यमंत्री का पद स्वीकार भी करती हैं, ये इनके लिए कांटों का ताज होगा,
क्योंकि ऐसे मसाइल गुज़िश्ता 10 माह में उठे हैं जिन पर शायद यकीन ही नहीं होता था, चाहे वो बड़े जानवरों के ज़बह का मसला हो, चाहे वो पंडितों के लिए मखसूस जगह का मसला हो, चाहे वो स्कूलों में जो पुश्तनी वाशिंदे होने की जो असनाद है उनके तकसीम करने का मसला हो। तो ऐसे मसाइल बीजेपी ने उठाया है जो एजेंडा ऑफ अलायंस, जो कम अज़ कम मुश्तरक प्रोग्राम से बाहर थे। अब यही देखना होगा कि महबूबा मुफ्ती को कि कहीं ऐसे मसाइल तो सामने नहीं आए।
याद रहे 7 जनवरी को पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती सईद के देहांत के बाद इनकी उत्तराधिकारी और पार्टी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने तुरंत मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बजाय 3 सप्ताह तक पिता के शोक में राजनीतिक गतिविधियां त्याग दी। इस बीच राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ और राज्यपाल एनएन वोहरा ने 500 करोड़ रुपए की रिलीफ राशि बाढ़ पीड़ितों में बंटवा दी। उन्होंने कई ऐसे मुद्दों पर भी बड़े निर्णय लिए जिनका वादा पीडीपी और भाजपा गठबंधन सरकार ने किया था। इनमें फूड सिक्योरिटी एक्ट में परिवर्तन करके 3 किलो के बजाय नागरिकों के लिए 7 किलो अनाज बांटने के प्रस्ताव को मंजूरी देना भी एक शेष निर्णय है। अगर इस बार दिल्ली में महबूबा और भाजपा नेताओं की बातचीत सफल रही तो पिछले 70 वर्ष में महबूबा मुफ्ती राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री होंगी। रियाज मसरूर, BBC श्रीनगर।
दिन भर शॉर्टवेव 25, 31 और 41 मीटर बैंड यानी 7,565, 7,600, 9,510, 11,595 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज़ पर।
ये BBC है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फजल के साथ। महाराष्ट्र के लातूर में अब पानी पर पहरा लगा दिया गया है, साथ ही 5 या इससे ज़्यादा लोगों के एक साथ आने पर भी निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। पिछले 1 महीने से नलों के जरिए पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है। पहले महीने में एक बार नलों में पानी आता था, अब उसकी भी उम्मीद नहीं रही। वहाँ क्या हालात हैं इसका जायज़ा लेती संजय तिवारी की ये रिपोर्ट, जिसे पेश कर रहे हैं अमर शर्मा।
लातूर में पानी इकट्ठा करने के टांकों पर लोगों की भीड़ उमड़ने लगी। कानून व्यवस्था की स्थिति चरमराने लगी, जिसके चलते पानी आपूर्ति की प्रक्रिया ठप पड़ गई। इलाके में धारा 144 लागू है। आज जिलाधिकारी दफ्तर में स्थानीय नागरिकों और अधिकारियों की एक बैठक हुई। इसमें शामिल थे पर्यावरण और पानी से जुड़े मामलों के लेखक अतुल देउलगांवकर, जो बताते हैं,
पानी के कम होने की वजह से यहाँ के कॉरपोरेटर और गुंडे लोग पानी जाने नहीं दे रहे हैं। वो खुद के इलाके में पानी देना चाहते हैं। और दूसरी बात, जो लातूर इलाके को जो पानी जहाँ से आता है वहाँ से भी लोग पानी नहीं देते थे, इसलिए पानी ठीक ढंग से डिस्ट्रीब्यूट हो इसलिए कलेक्टर ने 144 लागू किया है। और इस वजह से अभी ये गए दो दिनों में कुछ ठीक ढंग से डिस्ट्रीब्यूशन चालू हो गया है।
नल सूखे पड़े हैं, टैंकरों से मिलने वाले पानी से लोगों को गुजारा करना पड़ रहा है। लातूर में पैदा हुए और यहीं के निवासी 53 वर्षीय व्यवसायी धनंजय महेंद्रकर बताते हैं,
पिछले 5-7 साल से पानी की किल्लत लातूर में है। 8 दिन में एक बार पानी आता था लातूर में, मगर अभी के आज की हालत तो ऐसी है कि अभी कारपोरेशन प्रति परिवार 200 लीटर पानी 10 दिन में देता है। वो फैमिली चाहे 2 लोगों की हो या 10 लोगों की हो, इस्तेमाल तो घी के बराबर हो गया। अभी जैसे घी अभी अपने खाने में थोड़ा बहुत डालते हैं, वैसे ही भी पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। वो करके भी उनको भी जो है पानी बस में होता नहीं है। पानी नहाने के लिए पानी नहीं मिलता है, पीने के लिए नहीं मिलता, तो नहाने की बात तो और है।
लातूर में पानी बहुत कीमती चीज बन गई है। पानी को लेकर होने वाले संघर्षों में कई लोगों की जान जा चुकी है। लातूर के जल संकट पर शोधपूर्ण अभ्यास कर चुके अतुल देउलगांवकर का मानना है कि 4 सालों से कम बारिश होना भी जल संकट की अहम वजह है। लातूर शहर में करीब 25,000 बोरवेल हैं, जिसमें आधा से ज्यादा तो अभी ही सूख गए हैं। मई में जब गर्मी बढ़ेगी तब हालात और बिगड़ सकते हैं।
लगभग 30 मौतें तो ये गए 1.5 महीने में ही हो गई पूरे मराठवाड़ा में। मराठवाड़ा में लगभग 40,000 देहातों में पानी की स्थिति बहुत ही गंभीर है। लगभग 15 सालों से लातूर में पीने के पानी का एक बहुत बड़ा मसला होता है, और इसकी वजह यह है कि पानी भी नहीं है, और दूसरी बात हमारे पास लगभग 80% लीकेज है, और नलों को टैप भी नहीं है। ये सब एक साथ होके वेस्टेज पानी का बहुत होता है। रिसाइकल एंड रीयूज ऑफ वाटर जो हर यूरोपियन कंट्री में होता है, हरित शहरों में होता है, ये यहाँ पे बिल्कुल नहीं हो रहा। क्लाइमेट चेंज के वक्त में हर रोज नया पानी मिले, ये तो हो नहीं सकता।
एक अनुमान के मुताबिक अब तक 20-25% लोग लातूर छोड़कर जा चुके हैं। महेंद्र कर बताते हैं कि जिनके पास पैसा है वो खरीद कर पानी पी रहे हैं।
पानी बिल्कुल मिल नहीं रहा है, और पानी की वजह से शहर जो है 25% तो खाली हो चुका है। जो बाहर के लोग थे वो बाहर निकल गए समझो। अभी सिटी के लोग जो है, जो कि नहीं जा सकते इधर उधर, वो लोग बचे हुए हैं, मगर पानी नहीं मिल रहा है। खरीदी करने की हैसियत समझो आज है, मगर कल नहीं होगी। आज का 1,500 रुपए का टैंकर कल शायद 2,000 में मिलेगा, या 3,000 में मिलेगा, या नहीं मिलेगा। तो बहुत ही मुश्किल और बहुत तकलीफ की बात है।
कहा जाता है कि पानी की किल्लत की वजह से विश्व में महायुद्ध हो सकता है। फिलहाल लातूर में पानी को लेकर जद्दोजहद इतनी है कि 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। ऐसे में 2 महीने बाद हालात क्या होंगे कहना मुश्किल है। नागपुर से संजय रमाकांत तिवारी के साथ, दिल्ली से अमर शर्मा।
आज आपको इंतजार होगा अपने पत्रों का, लेकिन आपके पत्रों को स्थान देंगे घटनाचक्र कार्यक्रम में। अभी आज की विशेष रिपोर्ट। कश्मीर घाटी में 1990 के दशक में चरमपंथ चरम सीमा पर था। धीरे धीरे हालात संभलते गए और लगभग सामान्य से हो गए, लेकिन पिछले कुछ महीनों में चरमपंथी हमले बढ़े हैं। चरमपंथियों के जनाजों में हजारों आम लोग शामिल हो रहे हैं, और विशेषज्ञों के अनुसार चुनी गई राज्य सरकार की अनुपस्थिति में कश्मीर युवाओं का तेजी से रेडिकलाइजेशन हो रहा है। हमारे साथी जुबैर अहमद अभी हाल में कश्मीर के दौरे से लौटे हैं। सुनिए उनकी 5 रिपोर्टों की सीरीज की पहली कड़ी।
शहीद होगा और लगे रहने और क्या? हमने खुद अपने हाथों से उसका साफ किया। हाँ, चेहरा धोया खुद अपने हाथ से।
ये थे शब्द एक कश्मीरी माँ के, जिसका 21 वर्षीय बेटा उमेश अहमद शेख इस बयान से केवल 2 महीने पहले एक पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था। उमेश श्रीनगर से 50 किलोमीटर दूर पुलवामा का रहने वाला था और बीटेक का छात्र था। वो पाकिस्तान स्थित लश्कर ए तौबा का एक चरमपंथी भी था। उमेश की माँ शहजादा अख्तर आगे कहती हैं,
जो अल्लाह के राह में शहीद हुए वो तो जिहादी हैं ना,
उसको जिहाद कहेंगे या सियासी लड़ाई?
शहजादा अख्तर के चेहरे पर मैंने कोई शिकन नहीं देखी, और बेटे की मौत पर उनका दर्द महसूस नहीं किया। हो सकता है कि वो रो धोकर अब अपनी तबीयत हल्की कर चुकी हूँ, लेकिन मुझसे बातें करते वक्त उनकी आवाज़ में जो दृढ़ता थी उसे मैं पूरी तरह से महसूस कर रहा था। 2 शब्द उनके होठों पर बार बार आ रहे थे, जिहाद और आज़ादी। शहजादा अख्तर का परिवार मध्यम वर्गीय है। वो एक स्कूल की शिक्षक हैं। उनके घर के अंदर और बाहर मैंने कई युवाओं से मुलाकात की जो या तो पढ़ाई कर चुके हैं या पढ़ाई ख़त्म करके बेरोजगार हैं। उमेश एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी था और अब वो उनका हीरो बन चुका है। वहाँ मौजूद मोहम्मद असलम, जावेद और मोहम्मद आशिक और दूसरे लोग उसके दोस्त थे और उसके जनाजे में शामिल हुए थे। उनसे बातें करके लग रहा था कि कश्मीर की वादी एक बार फिर से हिंसा की आग में लिपटने वाली है। कश्मीर में युवाओं को कट्टरपंथी बनाने का नया दौर शुरू हो चुका है। विद्रोह को जिहाद का नाम दिया जा रहा है। इसी मार्च के महीने में अब तक 3 चरमपंथी मारे जा चुके हैं। उन्हें शहीद का दर्जा दिया जा रहा है। उनके जनाजों में हजारों आम नागरिकों की शिरकत अधिकारियों के लिए चिंता का सबब है। कश्मीर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर गुल मोहम्मद वानी कहते हैं,
एक रेडिकलाइजेशन है और एक दोबारा एक एलिनेशन का एक माहौल हुआ, और जिसमें एक फ्राइटनिंग चीज़ जो है वो ये है कि लोकल यूथ की जो रिक्रूटमेंट मिलिटेंसी में लोकली हो रही है, बहुत सारे मिलिटेंट अटैक्स जो है आए दिन तकरीबन कुछ एरियाज में, इसमें कोई स्लो डाउन नहीं हो रहा है।
उमेश के जनाजे में शरीक होने वाले 20 वर्षीय जावेद से मैंने पूछा, तुम जनाजे में क्यों गए?
सब लोगों के मन में यही था कि हम भी गन उठाएं,
हम भी कश्मीर के लिए कुछ करें, इस कौम के लिए।
20,000 लोग थे।
20,000? जबकि उस वक्त
उससे भी ज़्यादा होंगे, पाबंदी के बावजूद भी 20,000 से ज़्यादा ही होंगे।
तो आप गए अपनी मर्जी से कि आपको भेजा गया?
नहीं, अपनी मर्जी से गया था।
उमेश की मौत पर पुलवामा में कई दिनों तक दुकानें बंद रहीं और माहौल में तनाव रहा। इसी तरह 10 मार्च को कुलगाम में मारे गए चरमपंथी अबू कासिम के जनाजे में हजारों लोग शामिल हुए। CRPF के एक उच्च अधिकारी के शर्मा मानते हैं कि आम जनता मिलिटेंट्स के जनाजे में शामिल हो रही है, पर उनके अनुसार लोगों को इसमें धकेला जा रहा है।
जनाजे वगैरह होते हैं, उसमें जो हमारी आम जनता है वो डराने और धमकाने की वजह से वो काफ़ी लोग आ जाते हैं। हो सकता है कि कुछ दिन के लिए डर की वजह से, धमकाने की वजह से, अपनी सुरक्षा की वजह से, इनके कहने से ये बाहर आ जाएं, लेकिन आप देखेंगे कि कुछ दिन बाद जैसे ही इनकी असलियत सामने आएगी, जनता इनको जैसे पहले दुत्कारा था वो फिर दुत्कार देगी, दूर भगा देगी।
कश्मीर के बुद्धिजीवी बार बार आगाह कर रहे हैं कि अगर घाटी में सियासी सरगर्मी बहाल ना हुई तो इसका अंजाम बहुत गंभीर हो सकता है। मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की मौत के बाद उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती ने सरकार में अपनी पार्टनर BJP के साथ सरकार चलाने में हिचकिचाहट दिखाई है, जिसके कारण जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लागू है। यहाँ सभी कह रहे हैं कि PDP और BJP सरकार की बहाली वक्त की ज़रूरत है। प्रोफेसर गुल मोहम्मद वानी के अनुसार राजनीतिक शून्यता के कारण कश्मीर दोबारा मिलिटेंसी की तरफ लौट रहा है।
इस वक्त जम्मू कश्मीर रियली एक डिफ़िकल्ट फेज में है, क्योंकि आए दिन जो है प्रॉब्लम्स में इजाफा हो रहा है, सोल्यूशन नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट का बनना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि वो गवर्नमेंट क्या फोकस्ड होगी, क्या वो गवर्नमेंट जो वेल मीनिंग होगी।
राज्य में पिछले चुनाव में सियासी ध्रुवीकरण साफ नज़र आया था। हिंदू बहुल जम्मू में BJP जीती थी, जबकि मुस्लिम बहुल कश्मीर घाटी में PDP विजय रही थी। राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर दोबारा विधानसभा चुनाव हुए तो नतीजे पहले से बहुत अलग नहीं होंगे। विशेषज्ञों के अनुसार कश्मीर में सियासी स्थिरता लाना राज्य के नेताओं की जिम्मेदारी तो है ही, लेकिन प्रोफेसर वानी कहते हैं कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी अधिक है। विडंबना यह है कि आज अहिंसा की बात वो कर रहा है जो कभी हिंसा का पुजारी हुआ करता था। पूर्व चरमपंथी सैफुल्ला के अनुसार बंदूक से कुछ हासिल नहीं होगा।
भाई देखिए, मैं तो हर बच्चे से यही कहूँगा कि भूल कर भी हथियार मत उठाना, भूल कर भी हथियार मत उठाना, क्योंकि हमने इस जहर को पिया हुआ है, हमने इस जहर को पिया हुआ है, हम मेरे बच्चों, हमने इस जहर को पिया हुआ है। अगर आपने बंदूक उठाई, या तो आप दुनिया से चले जाओगे या आप जेल जाओगे, आपकी अगर जेल गए तो ज़िंदगी ख़राब।
सैफुल्ला ने 1990 के दशक में जवानी के जोश में जिहाद करने के लिए बंदूक उठाई थी। 10 साल उन्होंने जेल में काटे। आज कश्मीर एक चौराहे पे खड़ा है। क्या युवा सैफुल्ला की सलाह मानेंगे या फिर जिहाद का पाठ पढ़ाने वालों की बात पर अमल करेंगे? इस हसीन वादी को दोबारा जहन्नुम बनने से रोकने में केंद्र की भूमिका अहम हो सकती है। विशेषज्ञ कहते हैं कि मोदी सरकार को ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। जुबैर अहमद, BBC, श्रीनगर, कश्मीर।
जुबैर अहमद की ये रिपोर्ट आप कल सुबह नमस्कार भारत में दोबारा सुन सकते हैं। कल शाम कश्मीरी पंडितों पर उनकी रिपोर्ट सुनना भी ना भूलें। और अब T20 विश्व कप। ताज़ा समाचार ये है कि बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हुए 6 ओवरों में 2 विकेट पर 25 रन बना लिए हैं। और इससे पहले कि आपसे विदा ली जाए, एक नज़र मुख्य समाचारों पर।
BBC समाचार। अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा क्यूबा पहुंच चुके हैं। वे 3 दिनों के क्यूबा दौरे पर हैं। अमरीकी इतिहास में ओबामा क्यूबा की यात्रा करने वाले दूसरे राष्ट्रपति बन गए हैं। पिछले एक सप्ताह से लापता चल रहे चीन के मशहूर स्तंभकार जिया के वकील यान जिन ने पुष्टि की है कि जिया को बीजिंग पुलिस ने हिरासत में लिया है। इसराइल ने कहा है कि वो युद्धग्रस्त यमन में मौजूद बचे हुए यहूदियों में से कईयों को बचाने में कामयाब रहा है। एक गुप्त मिशन के तहत इसराइल ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और 19 लोगों को वहां से निकाला। पाकिस्तान के कराची शहर में एक सिक्योरिटी गार्ड ने भुतहा मास्क पहने 11 साल के बच्चे को गोली मार दी। पुलिस के अनुसार मास्क पहने बच्चे ने अचानक पीछे से गार्ड को डराया और उसकी प्रतिक्रिया में गार्ड ने गोली चलाई। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। कार्यक्रम आप तक पहुंचाने में मदद की राजेश चौहान ने, रेहान फदल को, सभी साथियों के साथ अनुमति दीजिए। नमस्कार।